नमस्कार, आज हम एक खास पुस्तक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, नवयुग का मत्स्यावतार।
जी,
ये पुस्तक 1988 से 90 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हाँ बिल्कुल।
और इसके प्रणेता हैं पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदोमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आप जानते ही हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक।
जी,
पूज्य गुरुदेव ने तो इस पूरी साहित्य माला को अपना ज्ञान शरीर कहा था।
हाँ, कहा था।
और ये भी आग्रह किया था कि इसे जन जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा था, मुझे याद है, मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा, सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
बिल्कुल सही, ये उनका एक निर्देश ही था।
तो आइए कोशिश करते हैं इस पुस्तक के जो मूल विचार है उन्हें समझने की।
हाँ जरूर। देखिए, ये पुस्तक एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के विचार को सामने रखती है।
अच्छा।
और इसकी शुरुआत होती है एक प्राचीन लेकिन बहुत ही सिंबॉलिक, मतलब प्रतीकात्मक कथा से।
हाँ, वो ब्रह्मा जी और मछली वाली कहानी मुझे याद है।
जी वही, जब ब्रह्मा जी संध्या कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है।
हाँ बिल्कुल, छोटी सी।
और फिर वो दया करके उसे पहले कमंडल में रखते हैं, फिर वो बढ़ जाती है तो तालाब में, और बड़ी तो फिर समुद्र में छोड़ देते हैं।
लेकिन वो तो बढ़ते बढ़ते पूरे समुद्र में ही फैल जाती है ना?
बिल्कुल। और फिर अंत में वो मछली क्या कहती है? वो कहती है कि मैं पर ब्रह्म हूं।
अच्छा।
तो यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये नहीं कि कोई दैवीय हस्तक्षेप हुआ, बल्कि ये कि कैसे एक बिल्कुल तुच्छ सी दिखने वाली शुरुआत,
जैसे वो छोटी मछली।
हाँ, या कोई एक अकेला समर्पित व्यक्ति, वो एक माध्यम बन सकता है, एक चुना हुआ माध्यम उस विशाल ईश्वरीय प्रेरणा से चलने वाले विस्तार का।
मतलब जब व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत होती है।
सही, जब व्यवस्था बदलनी हो। कथा का सार यही है कि करने वाला कोई भी दिखे, कर्ता कोई भी हो, प्रेरणा और जो असली क्षमता है वो उसी अदृश्य शक्ति की होती है।
अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, तो एक सिद्धांत है।
हाँ, एक तरह का सिद्धांत है
कि कैसे छोटे से लघु से विराट का सृजन होता है, जैसे बीज से जंगल बन जाता है।
बिल्कुल, या जैसे विज्ञान में कहते हैं अमीबा से पूरी सृष्टि का विकास। पुस्तक कहती है कि ये दिव्य प्रेरणा से ही होता है।
ठीक है, पर आज के युग में, आज के समय में इस मत्स्यावतार का क्या मतलब निकाल सकते हैं हम?
देखिए, पूज्य गुरुदेव इसी सिद्धांत को आज के युग पर लागू करते हैं और वो इसे कहते हैं प्रज्ञा अवतार।
प्रज्ञावतार मतलब?
प्रज्ञा यानी बुद्धि, विवेक, विवेक का अवतरण। उनका कहना था कि आज का जो युग परिवर्तन है, जहां हमें गलत और अनुचित को हटाना है और नया सृजन करना है, ये भी एक ऐसा ही प्रज्ञा अवतार है। अब ये काम देखने में तो मानवीय क्षमता से बहुत बड़ा लगता है।
हाँ, लगता तो है।
लेकिन अगर इसके पीछे वो दैवीय संकल्प शक्ति है तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है।
इतिहास में भी तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, है ना? मुझे याद आ रहा है जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन।
बिल्कुल।
इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी उन्होंने, और साधन कितने सीमित थे, या फिर बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन।
सही कहा, पुस्तक में इनका जिक्र भी है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे बहुत सीमित साधनों से भी कितने बड़े परिवर्तन हुए, और इनमें कहीं ना कहीं उस दैवीय शक्ति का संकेत मिलता है।
अच्छा,
तो इसी नजरिए से पुस्तक शांति कुंज को, जो इस पूरे आंदोलन का केंद्र है और उससे जुड़े जो विशाल प्रयास हैं,
जैसे
अखंड ज्योति पत्रिका जो लाखों में छपती है, या लगभग 3,000 पुस्तकों का लेखन और उनका कई भाषाओं में अनुवाद।
हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है।
और देश भर में हजारों प्रज्ञापीठ, मतलब ज्ञान केंद्र, उनकी स्थापना। फिर युग संधि महापुरुषचरण जैसे बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान।
जी,
तो पुस्तक इन सबको उस अदृश्य चेतना द्वारा चलाए जा रहे आधुनिक प्रज्ञावतार के प्रमाण के तौर पर देखती है। तर्क ये है कि इतना सब कुछ किसी सामान्य व्यक्ति या संगठन के बस का नहीं हो सकता।
तो जो मूल विचार है वो विस्तार का है, एक्सपेंशन का। जैसे वो मछली फैली थी,
हाँ,
वैसे ही आज अच्छी बातों को अच्छे लोगों को फैलाना है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पुस्तक यही कहती है कि मत्स्यावतार का उद्देश्य था श्रेष्ठता का विस्तार।
अच्छा।
और आज के युग में भी सज्जनता और सत्प्रवृत्तियों, मतलब अच्छी आदतें और अच्छे विचार, इनके विस्तार की जरूरत है।
ठीक है।
और इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल, व्यवहारिक योजना भी दी है पुस्तक में।
वो क्या है?
वो है 1 से 5, 5 से 25।
अच्छा, 1 से 5, 5 से 25।
हाँ, मतलब हर सदस्य कम से कम 5 लोगों को इन विचारों से जोड़े। पूज्य गुरुदेव उन्हें अनुपाठक या सह अध्यता कहते थे।
ठीक।
और फिर वो नए लोग वो सदस्य बनकर आगे पांच पांच लोगों को जोड़े।
अच्छा, तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन या आध्यात्मिक नेटवर्किंग जैसी बात हुई,
कह सकते हैं। लक्ष्य ये है कि ऐसे सृजन शिल्पियों यानी जो रचनात्मक काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या करोड़ों तक पहुंचे।
करोड़ों तक।
लेकिन ये तो भारी फैलाव की बात हुई, क्या सिर्फ यही काफी है? व्यक्ति के अपने अंदर भी तो कुछ तैयारी चाहिए होगी ना।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुस्तक बाहरी विस्तार के साथ साथ व्यक्ति की जो आंतरिक तैयारी है उस पर बहुत जोर देती है।
किस तरह की तैयारी?
अपने अंदर जो ईश्वरीय चेतना है उससे जुड़ना, पूजा उपासना को सिर्फ कर्मकांड तक न रखना बल्कि उसे जीवन में उतारना, जीवन में उत्कृष्टता लाना, उदारता लाना, ये सब बहुत जरूरी बताया गया है।
और इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए हैं क्या?
जी हाँ, जैसे नियमित साधना करना, समय दान यानी समाज के लिए रोज कुछ समय निकालना, अंशदान यानी अपनी आय का एक छोटा हिस्सा देना, और ज्ञान रथ वो चलते फिरते पुस्तकालय होते हैं, उनके माध्यम से विचारों को फैलाना। हाँ, ज्ञान रथ तो मैंने देखे।
और अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए समय समय पर शांति कुंज जैसे जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनसे जुड़ते रहने का भी सुझाव दिया गया है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो नवयुग का मत्स्यावतार हर व्यक्ति को एक बहुत बड़े ईश्वरीय प्रेरणा वाले युग परिवर्तन अभियान का हिस्सा बनने के लिए बुला रही है।
बिल्कुल, एक आवाहन है ये।
और ये समझा रही है कि कैसे हमारे छोटे छोटे कदम भी अगर सही दिशा में हो और उस दिव्य चेतना से जुड़े हों तो उस छोटी मछली की तरह ही बहुत बड़े विराट परिणाम दे सकते हैं।
एकदम सही। पुस्तक का सार यही है कि श्रेष्ठता और सज्जनता का विस्तार, इसी से नए युग की नींव रखी जाएगी और इसमें हर एक व्यक्ति का जुड़ाव, उसका योगदान मायने रखता है। ये पुस्तक वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में कोई व्यक्ति, हम और आप, अपनी सीमित क्षमताओं से ऊपर उठकर किसी बड़े सामूहिक लक्ष्य के लिए,
हाँ,
उस मत्स्यावतार की तरह विस्तार पाने की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बन सकता है।
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
हाँ, इसी प्रश्न के साथ शायद आज की चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं।
बिल्कुल,
सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।